ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 10 अप्रैल 2022 के लिए है। विषय: क्या पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक हैं? स्वर्णपथ योहन्ना। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। उत्तरदायी अध्ययन भजन संहिता। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने दुरूही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। भूख और प्यास के मारे विवकल हो गए, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सख्ती से छुड़ाया। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कामों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उसने उनको अंधेरे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला, और वो अपने वचन के द्वारा उनको ठीक करता और जिस घड़े में वो पड़े हैं उससे उन्हें निकालता है। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब पुरानी तेरे ही पास आएंगे। भजन संहिता। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हांफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर ईश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये स्मरण करके मेरा प्राण शुकत हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसके गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारे सूर्या में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नए नए प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उनको ठीक किया। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलम और यहूदिया से और यर्दन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। लूका। फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा। मत्ती। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राजे और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। मत्ती। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, वो मछली मांगे तो वो उसे सांप दे? तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? मत्ती। और जब वो कुफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की और कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे ठीक करूंगा। सूबेदार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसका सेवक उसी घड़ी ठीक हो गया। मत्ती। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को काठ पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढारस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। लूका। थोड़े दिन के बाद वो नायन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। मत्ती। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। बीमारों को ठीक करो, मरे हुओं को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने संतामंत पाया है, संतामंत दो। यकूब। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया से प्राचीनियों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वार रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे ठीक हो जाओ। धार्मिक जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर तत्व सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर हर जगह है और उसके बिना कुछ भी मौजूद नहीं है या उसकी कोई शक्ति नहीं है। मसीह एक आदर्श सत्य है जो क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से बीमारी को, पाप को ठीक करने के लिए आता है और ईश्वर को सभी शक्ति प्रदान करता है। जब दिव्य विज्ञान एक कार्तिक मन में विश्वास को खत्म कर देता है और भगवान में विश्वास पाप में और उपचार के भावतिक तरीकों में सभी विश्वासों को नष्ट कर देता है, तो पाप, बीमारी और मृत्यु गायब हो जाएंगे। विनम्र नासरी ने इस पाप को दूर कर दिया कि पाप, बीमारी और मृत्यु में शक्ति है। उसने उन्हें शक्तिहीन साबित कर दिया। पापी को सुधारने और बीमारी को ठीक करने वाली प्रार्थना एक पूर्ण विश्वास है कि भगवान के लिए सभी चीजें संभव हैं, एक आध्यात्मिक समझ, एक निःस्वार्थ प्रेम। इस विषय पर कोई कुछ भी कहे या सोचे, मैं अनुभव से बोलता हूँ, प्रार्थना, देखना और काम करना आत्म लगाव के साथ संयुक्त ईश्वर का अनुग्रह है जो मानव जाति की मसीहत और स्वस्थ के लिए सफलतापूर्वक किया गया है। शास्त्र कहते हैं, और विश्वास की प्रार्थना के द्वार रोगी बच जाएगा। ये उपचार प्रार्थना क्या है? केवल एक अनुरोध है कि भगवान बीमारों को ठीक करेंगे। ईश्वर उपस्थिति से अधिक प्राप्त करने की कोई शक्ति नहीं है जो हमेशा हाथ में है। बीमारों के लिए इस तरह की प्रार्थना का लाभकारी प्रभाव मानव मन पर होता है, जिससे ये ईश्वर में अंधविश्वास के माध्यम शरीर पर अधिक शक्तिशाली रूप से कार्य करता है। हालांकि ये एक विश्वास है जो दूसरे को बाहर निकालता है। अज्ञात में विश्वास बीमारी में विश्वास को बाहर निकालता है। ये ना तो विज्ञान है और ना ही सत्य जो अंधविश्वास के माध्यम से कार्य करता है, ना ही ये ईश्वरीय उपचार सिद्धांत की मानवीय समझ है, जैसा कि यीशु में प्रकट हुआ, जिसकी विनम्र प्रार्थनाएं सत्य के गहरे और कर्तव्य निष्विरोध थे। ईश्वर के साथ मनुष्य की समानता और मनुष्य की एकता के साथ सत्य और प्रेम है। एक क्षण के लिए सुचित हो जाएं कि जीवन और बुद्धि विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है, ना तो भावतिक में और ना ही भावतिक के साथ, तो शरीर तब कोई शिकायत नहीं करेगा। यदि बीमारी में विश्वास से पीड़ित हैं तो अचानक आप खुद को स्वस्थ पाएंगे। शरीर को आध्यात्मिक जीवन, सत्य और प्रेम द्वारा नियंत्रित किए जाने पर दुख को आनंद में बदल दिया जाता है। इसलिए यीशु की प्रतिज्ञा की आशा पूरी हुई कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्योंकि अहंकार शरीर से अनुपाशित है और सत्य और प्रेम के साथ मजबूत है। प्रभु की प्रार्थना आत्मा की प्रार्थना है, भावतिक अर्थ की नहीं। भावतिक समझ के विश्वास और सपने से पूरी तरह से अलग आध्यात्मिक समझ और पूरी पृथ्वी पर मनुष्य की प्रभुत्व की चेतना को प्रकट करके जीवन दिव्य है। ये समझ त्रुटि निकालती है और बीमारों को ठीक करती है, और इसके साथ आप अधिकारी के नियम बोल सकते हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यीशु ने ये बात कही। कोठरी आत्मा के अभियारने का प्रतीक है, जिसका द्वार पापी भावना को बंद कर देता है, लेकिन सत्य, जीवन और प्रेम को अंदर आने देता है। त्रुटि के लिए बंद, ये सत्य के लिए खुला है और इसके विपरीत। गुप्त में पिता भावतिक इंद्रियों के लिए अनदेखा है, लेकिन वो सभी चीजों को जानता है और इरादों के अनुसार पुरस्कार देता है, भाषण के अनुसार नहीं। प्रार्थना के दिल में प्रवेश करने के लिए गलत इंद्रियों का दरवाजा बंद होना चाहिए। होंठों को मूक और भावतिक का वाद चुप होना चाहिए, ताकि मनुष्य में आत्मा, दिव्य सिद्धांत और प्रेम के साथ दर्शिक हों जो सभी त्रुटि को नष्ट कर दे। सही प्रार्थना करने के लिए हमें कोठरी में प्रवेश करना चाहिए और दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। हमें होंठों को बंद करना चाहिए और भावतिक इंद्रियों को शांत करना चाहिए। गंभीर लालसाओं के शांत अभियारने में हमें पाप को नकारना चाहिए और परमेश्वर की पूर्णता की याचना करनी चाहिए। हमें सूली को उठाने का संकल्प लेना चाहिए और काम करने के लिए ईमानदार दिलों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ज्ञान, सत्य और प्रेम की तलाश करनी चाहिए। हमें दैनिक प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना का उत्तर तब तक मिलता है जब तक हम अपनी इच्छाओं को व्यवहार में लाते हैं। गुरु का आदेश है कि हम गुप्त रूप से प्रार्थना करें और अपने जीवन को अपनी ईमानदारी को प्रमाणित करने दें। मसीही गुप्त सौंदर्य और आनंद में आनंदित होते हैं जो दुनिया से छिपे हैं, लेकिन भगवान उन्हें जानता है। आत्मविस्मृति पवित्रता और स्नेह निरंतर प्रार्थना है। पेशा नहीं, अभ्यास विश्वास नहीं, समझ सर्वशक्तिमान के कान और नेक हाथ हैं और वो निश्चय ही असीम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस उन्नत आध्यात्मिक समझ से पहले भावतिक वास्तुओं का एक बलिदान होना चाहिए। सर्वोच्च प्रार्थना केवल विश्वास की नहीं है, ये प्रदर्शन है। ऐसी प्रार्थना बीमारी को ठीक करती है और अवश्य ही पाप और मृत्यु को नष्ट कर देगी। हमारे मालिक ने अपने शिष्यों को एक संक्षिप्त प्रार्थना सिखाई जिसे हम उनके बाद प्रभु प्रार्थना के नाम से जानते हैं। हमारे गुरु ने कहा, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, और फिर उसने वो प्रार्थना दी जो सभी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। यहां मुझे ये बताने दें कि मैं प्रभु की प्रार्थना का आध्यात्मिक अर्थ क्या समझता हूं। हमारा परम पिता जो स्वर्ग में विराजता है, हमारा पिता माता भगवान, सभी सम्मान जैसा पूर्ण, पवित्र हो तेरा नाम, मनमोहक, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आ गया है, तू हमेशा मौजूद है, तुम्हारी इच्छा पृथ्वी में हो जैसे कि स्वर्ग में है, जैसा कि स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी हो, कि हम ये जानने में सक्षम हों कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। हमारी आज की रोटी हमें दे, आज के लिए हमें अनुग्रह दे, कृपया प्रसिद्ध स्नेह खिलाएं, और हमें हमारे कर्ज मुआफ कर, क्योंकि हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, और प्यार प्यार में परिलक्षित होता है, और हमें प्रलोभन में ना ले जा, बल्कि हमें बुराई से बचा। और परमेश्वर हमें प्रलोभन में नहीं ले जाता है, बल्कि हमें पाप बीमारी और मृत्यु से बचाता है, क्योंकि राज्य शक्ति और महिमा सदा के लिए तेरे ही हैं, क्योंकि परमेश्वर अनंत है, सर्वशक्ति है, सभी जीवन सत्य प्रेम सभी प्रशासक है और सभी में है। अब मैं मेरी बेकररी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव, मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है, प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।